HD Smartcast. You are listening to Health Shots brought to you by HD Smartcast.
Hello everyone. Welcome back to another She Slays Champion story. This week on She Slays, we have with us Kavita Pujara, who shares the story of true determination and grit with us, battled all obstacles that came their way and emerged victorious. Simran is a 22-year-old student residing in Bilaspur, Chhattisgarh. She was diagnosed with intellectual deficiency early on in her childhood. Today, Simran is an excellent badminton player who has been training to participate in the Special Olympics. Her story is immensely inspirational, teaching us about how to look at the silver lining in otherwise a dark and gloomy sky. So come, let's listen to this champ story.
My daughter is 22 years old. She is diagnosed with ID. Recently, I am at Chhattisgarh, Bilaspur. किसी के भी घर में जब कोई बच्चा स्पेशल डायग्नोज होता है, that is very shocking for each and every person. सबसे पहले तो यही होता है ना कि ये तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता. Because हमारे यहाँ तो सब हेल्दी हैं, सब बहुत अच्छा है, तो सारी फैसिलिटीज है. तो उसके बाद ये चीज हम सोच ही नहीं सकते. दिल अगर है तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में होना शुरू होता है कि ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुमने प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं रखा होगा. अब घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका रिएक्शन थोड़ा सा रहता है कि भाई इतने हम लोग तब क्वालिफाइड नहीं थे, हमारे सारे बच्चे नॉर्मल हैं, आप लोग इतना एजुकेटेड हो तो आप लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा. तो वो सारी चीजें फिर एक 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 ब्लेमिंग. फाइनली सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है मदर. पूरा प्रोसीजर तो उसी के थ्रू हुआ है ना. फैमिली हमारी ऐसी नहीं है, हमारा खानदान बहुत अच्छा है, हमारे खानदान में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ. तो फाइनली सब कुछ आपने ध्यान नहीं रखा, आपने जो भी फॉल्ट हुआ सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है. तो धीरे धीरे फिर वो सारी चीजें मदर को तो एक्सेप्ट करना ही करना है. मुझे तो ये सोचना है कि अब मुझे उसको नॉर्मल कैसे करना है, उसको आगे कैसे लाना है. तो मैं मेंटली तो प्रिपेयर थी कि मुझे इधर से भी बेयर करना है, उधर से भी बेयर करना है. सोच के फिर पता करना शुरू किया. यहाँ तो छत्तीसगढ़ में काफी सालों पहले यहाँ ये ऐसा कुछ स्पेशल वाला था भी नहीं. और पहले तो डॉक्टर ने डायग्नोसिस करने में ही उतना, हमको बताने में इतना टाइम लगा दिया. मतलब डेढ़ दो साल के बाद उन्होंने मुझे ये चीज क्लियरली, जबकि माइलस्टोन जब बच्चे के साथ होते हैं तो एवरी टाइम जब भी मैं बच्चे के लिए जाती थी वैक्सीनेशन के लिए या कुछ भी, तो मैडम के साथ काफी अच्छे टर्म्स हैं और छोटा सा शहर है तो हर कोई जानता है एक दूसरे को. तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी बच्ची को जो भी प्रॉब्लम है एटलीस्ट डॉक्टर मुझे क्लियर ही बताए कि आपके बच्चे MR है. ज्यादा प्रॉब्लम तब होती थी जब सिमरन के ही साथ दो दिन बड़ी सामने हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके यहाँ भी बेटी हुई थी जस्ट दो दिन पहले. घर में और स्पेशली मोहल्ले में हर जगह कंपैरिजन चलता, उसकी बेटी ये करती है, इसकी बेटी तो ये नहीं करती है, ये बेटी ऐसी, पूरा टाइम कंपैरिजन. उसमें ज्यादा फिर तकलीफ होती थी कि यार कंपैरिजन मत करो. तब तक तो हमें डायग्नोसिस भी नहीं हुई थी तो मुझे लगता नहीं चलो ठीक है हो जाएगा. तो कंपैरिजन के टाइम भी घर पे सारे ब्लेमिंग मेरे पे ही होती थी. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत अनहाइजेनिक और बहुत गंदा लगता था, बट इन लोगों का नहीं था और मैं वो चीज उनके साथ सपोर्ट नहीं करती थी, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी. अल्टीमेटली फिर कंक्लूजन यही निकला कि बिहेवियर थेरेपी ही एक ऐसी थेरेपी है जिससे बच्चा आपका ग्रो करेगा प्रॉपर. आप उसको नॉर्मलाइज, एकदम नॉर्मल तो नहीं बोल सकते बट स्टिल आप उसको डे टू डे एक्टिविटीज में उसको अपना इंडिपेंडेंट बना सकते हो. स्पीच थेरेपी शुरू के ढाई साल तक तो वो कुछ भी नहीं बोलती थी. स्पीच थेरेपी शुरू करने से थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स उसने स्टार्ट किए, फिर उसका बोलना शुरू हुआ धीरे धीरे. उसका बचपन से लेके आज तक सिर्फ मेरे ही साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है. मतलब वो पूरी तरह से फ्री है, मतलब उसकी पूरी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन का एक सिर्फ एक सेंटर है ना, वो सिर्फ मैं हूँ. तो फैमिली में जो पहले उसको जिस नजर से सारे देखते थे मेंबर्स, अब एटलीस्ट वो उन लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई है कि नहीं अगर इसको हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं बच्ची कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है. पर सिमरन का जो है, क्योंकि उनको वो बॉन्डिंग नहीं मिलती ना इन बच्चों के साथ, सबसे बड़ी चीज है वो आपके डायरेक्ट हार्ट को छूते हैं, फीलिंग को समझते हैं, बट उनमें ये सिक्स सेंस होता है, वो समझते हैं इस बात को. तो वो चीज तो उसको है. तो सुबह उठना है उसको, उठ के फ्रेशन अप हुए. हाँ उसका ये चीज है कि उठ के, मतलब मैं मेरी जो दोनों बेटियों में देखती हूँ वो डिसिप्लिन इसमें ज्यादा है. मेरी 11th में है तो अभी वो टीन एज में है और उसका थोड़ा सा अभी कोरोना के कारण घर पे है, वो स्कूल भी बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. तो लाइक 9:30 उसकी क्लास है,
9:30 सिमरन की भी क्लास है, दोनों की क्लास का टाइम सेम होता है। 9:30 से बैठी, इसकी एक क्लास हुई 10:30 या 10:45 उसकी एक क्लास कंप्लीट हुई, देन फिर एक क्लास 11:30 से होती है। तो अंदर आएगी, अपनी मेडिसिन लेगी, ये उसको है कि ट्यूशन के बाद एक गिलास पानी पियो बैठ के, पानी पिएगी, फ्रूट्स वगैरह कुछ है तो वो ले लेगी, देन फिर 11:30 से फिर क्लास 12:30 तक। और उसके बाद अंदर आके फिर हल्का फुल्का अपना कुछ घर का करना है, थोड़ा बहुत कभी बर्तन जमा दिए, कभी इधर उधर तुम्हारे कपड़े फैले पड़े हैं तो बेटा समेट लो, फिर अभी उसका 1 से 1:30 के बीच लंच का टाइम, और 2 बजे फिर उसकी अभी कंप्यूटर की क्लास है, 2 से 3 वो कंप्यूटर की क्लास है। लंच के बाद 1 घंटे का गैप होगा, कंप्यूटर क्लास हो जाएगी उसकी, और 3 बजे के बाद फिर वो रेस्ट करने जाएगी। फिर 4:30-5 बजे जैसे ही मैं रूम से निकली, वो भी रूम से निकल आएगी मेरे पीछे पीछे, फ्रेश हो जाएगी, अपना दूध का ग्लास उसका रेडी है, दूध पिएगी, उसके बाद सीधा होमवर्क करने बैठ जाएगी। मेरे को बोलना नहीं पड़ता होमवर्क के लिए बिल्कुल, दोनों क्लासेस का होमवर्क करने बैठेगी, फोटो खींच के वो सेंड कर देगी दीदी को, फिर कंप्यूटर का प्रैक्टिस करने बैठ जाएगी। फिर थोड़ा सा हम दोनों वॉक कर लेते हैं बाहर, कभी हुआ तो रात में एक आध है मेरी कली, तो वो आती है तो उसके बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल लिए और थोड़ी देर टीवी देख लिए, तो उसका एकदम फिक्स रूटीन है अभी। मतलब काफी मेरे चेंज हुए हैं बिकॉज स्पीच थेरेपिस्ट थी, 1.5 साल मैंने उससे लिया जब स्टार्टिंग, देन फिर सिमरन जैसे थोड़ी बड़ी हुई उसको फिर यहाँ स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में डाला मैंने, स्पेशल स्कूल यहाँ थी ही नहीं, तो एक स्कूल में डाला, 2-3 साल वहाँ रही, फिर वहाँ टीचर्स का था कि नहीं नॉर्मल बच्चों के साथ मैडम हम नहीं करवा पाएंगे। दूसरी एक नई स्कूल जैन इंटरनेशनल खुल रही थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे उन लोग काउंसलर भी रखते हैं, स्पेशल टीचर्स भी हैं उस स्कूल में। जब सारी चीजें पता की और स्कूल से पता किया तो बोले कि हाँ हमारे यहाँ ये सब कुछ आपको मिलेगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बच्ची को सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, स्पेशल एजुकेटर मिल गया, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं थी, क्योंकि यहाँ बिलासपुर में कोई स्पेशल एजुकेटर उस टाइम नहीं था। फिर जब स्कूल में डाला तो धीरे धीरे फिर वो सारी चीजें चेंज होने लग गई, स्पेशल एजुकेटर जो बैंगलोर से आए हुए थे, 1.5 साल स्कूल जहाँ सेट हो गया, एडमिशन फुल हो गए, 1-2 साल के बाद सारे वापस लौट गए। अब यहाँ अगेन फिर वो लोकल टीचर से काम होने लग गया, फिर धीरे धीरे चेंज। फिर भी मैंने उसको 6-7 साल वहाँ रखा क्योंकि स्टाफ से मेरी काफी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, तो वो लोग उसको पर्सनल अटेंशन देते थे, बट फिर फाइनली ये हुआ वो लोग भी फिर बोलने लगे कि नहीं अब इसको निकाल लो यहाँ से हो सके तो, स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है, बच्चे के साथ अगर कभी कुछ हादसा हुआ, इनकेस कभी हुआ, तो यहाँ पे कहीं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और बच्चे तो वैसे भी परेशान करते ही थे इसको क्लास में काफी, स्पेशली बॉयज ज्यादा परेशान करते थे, कॉपी फाड़ देंगे, बुक फाड़ देंगे, कभी उनको जैसे असाइनमेंट्स मिलते थे पिक्चर्स इसकी बुक से फाड़ के अपने असाइनमेंट में लगा लेते थे, तो काफी सारी चीजें होती थी। साथ कोई बैठता नहीं था तो इतने लोगों के बीच होने के बाद भी वो अकेला फील करती थी, टिफिन भी नहीं खाई थी, उसका कुछ मन नहीं करता था, बहुत सारी चीजें मुझे हर्ट हो रही थी। तो फिर मैंने उसको वहां से निकाल के फिर नागपुर के स्पेशल स्कूल में डाला, फिर अगेन मेरा अप डाउन शुरू हुआ, फिर कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी, फिर घर से प्रॉब्लम और टेंशन शुरू हुई कि वहाँ नहीं डालना है, बट कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मैंने बोला नहीं करना है, परेशान तो मैं हो रही हूँ, ठीक है मैं करूंगी। और मैंने मैं अपनी मेडिकल कॉलेज की जॉब भी छोड़ी उसी के कारण कि मुझे नागपुर अप डाउन करना, वहाँ उसको काफी अच्छा मिला, टीचर्स वहाँ के काफी अच्छे थे, लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी थी आगे, अब मुझे प्रॉपर प्लेस मिल गया है। बट फिर थोड़े दिन में वही रहने की प्रॉब्लम कि उसके साथ रहेगा कौन वहाँ, मैं वहाँ रह नहीं सकती, फैमिली पूरी यहाँ है, तो चाहते ही नहीं कि मैं बार बार अप डाउन करूँ, छोटी भी थी, छोटी भी सफर कर रही थी, पर ये था कि दादी थी तब तक, फैमिली का हमारा और हमारे यहाँ सोशल भी बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट का भी काफी है, तो बहुत सारे रिलेशन इधर उधर आना जाना, घर पे लोगों का लगा रहेगा, हमको जाना होता है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता था। उसको भी वहाँ मैंने 2-3 साल उसको वहाँ रखा, फिर 10th का मैंने वहीं से उसको अप्लाई करवाया, फिर वापस हमारा यही हो गया कि मैं बिलासपुर में ही रह के करवा पाऊंगी, आप मुझे गाइड कर दो टेलीफोनिकली, टीचर से टेलीफोनिकली लेती थी मैंने 2 महीने में, 1-2 हफ्ता वहाँ जाके सिमरन के साथ रहती थी, और फिर उसको वापस ला के यहाँ वही करवाना शुरू किया मैंने, तो अल्टीमेटली वो करके 10th भी उसका ओपन स्कूल से दिलवा दिया। तो साइमल्टेनियसली यहाँ काफी सारी चीजें उसकी हो ही रही थी, यहाँ थी तो बैडमिंटन भी उसका मैंने स्टार्ट करवाया, वही नागपुर की स्पेशल स्कूल के थ्रू ही उसका नाम गया था बैडमिंटन नेशनल्स में, और मैं रनर अप रही है। टीचर्स का खैर मेरे अलग अलग मिले हैं, और साइमल्टेनियसली यहाँ उसकी जो ट्यूशन लेती थी टीचर एजुकेटर 3-4 साल उसने करवाया, अभी भी वो कंटिन्यू कर रही है, तो नो डाउट वो अच्छे मिले। पहले तो मैंने नागपुर से ही बुलवाए थे स्पेशल एजुकेटर जो वहाँ पास आउट होते थे, और उसके बाद फिर सिमरन के लिए मैं यहाँ बुलवाती थी कि मैं उससे रहना वहना सारा कुछ मैं अरेंज करवा के दूंगी, मुझे सिमरन के लिए यहाँ एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए। काफी हेल्पफुल रहा उनका, मतलब एक ये होता है ना कि उसके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी है, क्योंकि यहाँ मैं कितनी भी क्लासेस कितने भी कोर्सेज मैंने ट्राई किए इधर उधर, अगर वो स्पेशल एजुकेटर नहीं है, कंप्यूटर की क्लास का मैंने किया तो वो नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाती थी, बोलते जरूर है कि हाँ हम इस पे ध्यान देंगे, पर जहाँ वो उनकी बैच बनती है 7-8-10 लोगों की, फिर वहाँ जब सबको एक साथ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो इसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में समझने में टाइम लगता है कि लैंग्वेज में या इसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझाए, तो वो प्रॉब्लम हो ही रही थी, तो फिर बेटर था कि स्पेशल एजुकेटर से ही फिर मैंने सारी चीजें करवाई। स्पेशल ओलंपिक में लास्ट ईयर से है वो एंजॉय कर रही है काफी, स्पेशल ओलंपिक तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज वहाँ फ्रेंड्स काफी सारे हैं, और मेन ये है कि अभी तक उसको वो चीज नहीं मिली थी, जैसे नागपुर में उसके स्कूल की फ्रेंड्स थे तो उसको वो बहुत मिस करती थी, जब से स्कूल हमारा बंद हुआ और मैंने उसको यहीं पे शिफ्ट किया और टीचिंग यहीं से शुरू करवाई, वहाँ सिर्फ हम एग्जाम दिलवाने ले जाते थे, तो उसको भी अपना एक सोशल एटमॉस्फेयर चाहिए, अपने फ्रेंड्स चाहिए। तो स्पेशल ओलंपिक में था कि आईडी बच्चे ही हैं सारे, उसको लगता था कि हाँ हमारे ही जैसे हैं, हम अलग नहीं हैं, और यहाँ का एक एटमॉस्फेयर, और अभी जो लास्ट कोविड वाला ईयर गया उसमें एक्टिविटीज भी इतनी सारी हुई है स्पेशल ओलंपिक में, वर्चुअल एक्टिविटीज से भी वो काफी कनेक्टेड रहे, काफी बिजी भी रहे और काफी लर्निंग भी उन लोगों को मिली है, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हुई, तो उसने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, और एक और बेनिफिट था कि उसकी सिस्टर के साथ सिबलिंग फोरम वाला जो है उसमें उसको अपनी सिस्टर के साथ कई जगह करना था, तो वहाँ भी दोनों ने एंजॉय किया काफी, तो ये तो अल्टीमेटली खैर इसके लिए बहुत अच्छा रहा। बस मैं ये एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि इन बच्चों को कभी भी कम नहीं समझना है, मतलब ये बच्चे ना आपसे दया चाहते हैं और ना आपसे कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, बस इक्वल चाहते हैं कि आप उनको अपने बराबर समझो, रिस्पेक्ट दो, मेन इन बच्चों को है उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, केयर देनी है और थोड़ा सा अटेंशन और प्रॉपर लव, बस इतना दिया तो ये बच्चे खुश हैं, इनको कोई महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, मतलब हमारी सिमरन तो छोटी सी, उसको कुछ भी कभी बाहर जाओ ना क्या लेके आओ, छोटी थी पहले तो उसके लिए एक अगर मैं छोटा सा प्लास्टिक का बॉल भी ले आऊं, उसको बॉल का बहुत शौक था, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बॉल उसके पास अलग अलग साइज के, कुछ नहीं लाया मैंने, सिर्फ 5 रुपए का एक बॉल भी लाके दे दिया, वो बच्ची मेरी खुश, और जो छोटी वाली है वो थोड़ा ब्रांडेड पे जाती है, पर इन बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार से आप कुछ भी दे दो, इसको चूड़ी का बड़ा शौक है, मीन्स मेरे कुछ पेशेंट्स और आते हैं जो, उनको सबको पता है कि सिमरन को चूड़ी बड़ी पसंद है, क्योंकि मेरे यहाँ अगर कभी कोई फीमेल पेशेंट आई और उसके हाथ में अच्छी चूड़ी दिखती है तो बढ़िया देख के उसको प्यार से खड़ी हो जाएगी, उसको देख के स्माइल करेगी, फिर वो लोग भी इससे थोड़ा रिएक्ट करके पूछते हैं कि बेटा कैसे हो क्या हो, देन वो आपकी चूड़ी आंटी बहुत सुंदर लग रही है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इतने प्यार से कॉम्प्लीमेंट देगी तो वो लोग भी खुश होकर इसको थैंक यू बोलते हैं, फिर चूड़ी पसंद आई तो एक आध बार नेक्स्ट स्टेप कभी आएंगी तो इसके लिए कभी ब्रेसलेट या छोटी सी चूड़ी ऐसी कुछ, तो बड़ी खुश हो जाती है देख के कि कुछ नहीं लाया, छुरी लेके आ गए, खुश है वो। इन बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार और अटेंशन चाहिए।
सो दिस वॉज सिमरन स्टोरी, अ ट्रू शी स्लेस फाइटर इंडीड। We hope her story inspired you and encourages you to take better care of your health. If you too have a story to tell, then do write to us at healthshots@hindustantimes.com and let us tell your story to the world. Till then, stay tuned in and don't forget to like, share and subscribe to She Slays. This is your host Chaya Dabas signing off. I will see you next week with another champion story. Till then, take care and keep slaying.
You were listening to Health Shots, brought to you by HT Smartcast. HT Smartcast.